नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी के लिए जीएसटी सुधारों पर एक बैठक की। बैठक में कृषि मशीनरी और उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12 से 18 प्रतिशत घटाकर 5% करने के हाल के निर्णय पर चर्चा की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ किसानों तक व्यापक रूप से पहुंचे। इन सुधारों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां भी तैयार की गई। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में बड़ा बदलाव आएगा।
रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले, और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रूपया कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रूपये से लेकर 63,000 रूपये तक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का लक्ष्य स्पष्ट किया है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में जीएसटी सुधार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश के कर और राजस्व प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर दरों में कटौती की गई है। नई दरें दुर्गा पूजा से पहले सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत देश भर में 500 से अधिक डेटा लैब विकसित करेगी। एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 से पहले आयोजित कार्यक्रम में टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और भारत जेन सहित 8 कंपनियों को इस उद्देश्य से चुना गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने मॉनसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने महानिदेशालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई समीक्षा बैठकें की। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ डेनियल केट्स को प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसको व्यापक रूप से आईएमएफ का दूसरा सबसे बड़ा नेतृत्व पद माना जाता है। यमन के हुती समूह ने इजरायली शहरों पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन हमले करने की जिम्मेदारी ली है। हुती सूत्रों के अनुसार मिसाइल से जाफा में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया गया, जबकि बीर शेवा और बंदरगाह शहर एलात पर ड्रोन से हमला हुआ। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अंतिम चरण में है, लेकिन वर्षा अब भी जारी है। कल राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई। मौसम कार्यालय शिमला के अनुसार आज और कल राज्य में अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
सोलन जिले के कोटला नाले में उफान आने से आधा दर्जन उद्योगों के भवन जलमग्न हो गए। कांगड़ा जिला में पोंग बांध का जलस्तर भी लगातार बारिश के चलते खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 604 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इस मॉनसून सीजन में अब तक 146 भूस्खलन, 98 फ्लैश फ्लड और 46 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वर्षा जनित दुर्घटनाओं में अब तक 424 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 45 लोग अभी भी लापता हैं। रितेश पूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। देश के पूर्वी और मध्य भाग में अगले 2 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना ओमान से होगा। आबूधाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स 344 अंक की गिरावट के साथ 82,669 और निफ्टी 103 अंक की गिरावट के साथ 25,319 पर कारोबार कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।